आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। गुरुवार को सालाना आर्थिक रिपोर्ट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। आर्थिक सर्वे के अनुसार देश की आर्थिक सेहत बिल्कुल ठीक है। 2026-27 में विकास दर 6.8 से 7.2 के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष में यह 7.4% रह सकता है। इस सर्वे में यह दावा किया गया है कि पिछले साल अप्रैल जून में देश के 56 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने मीडिया को आर्थिक सर्वे पर जानकारी देते हुए कहा,
इम्पोर्टेंट थिंग इज वेदर इट इज फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर और द फ्यूचर आर इंडियाज ग्रोथ नंबर्स स्टैंड आउट इन कंपैरिजन टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड and that is why we call india a oasis of economic performance in the global scenario.
mudra ki sthirta ko nageshwaran ne manufacturing se jodte hue kaha,
since we have aspirations to become a major global player and naturally currency strength and stability is associated with economic rise, but how do we get there? And that is where the survey focuses on, saying that manufacturing strength is a precondition for achieving currency stability and strength. A strong growth in manufacturing exports leads to improved current accounts position, leads to forex reserve accumulation, and therefore gradual strengthening of currency credibility.
आर्थिक सर्वे के बाद अब बजट की बारी है। निर्मला सीतारमण रविवार को संसद में इसे पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण की तारीफ की।
वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी हैं, महिला वित्त मंत्री ऐसी हैं, जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, ये विश्व का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का ध्यान इस समय बजट की ओर है। अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा,
देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं, और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है।
कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के बयान को पाखंड बताया है। कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश कहते हैं कि हर सत्र के पहले प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह की बातें करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वे विपक्ष को विश्वास में नहीं लेते। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के टीकाराम जुली ने प्रधानमंत्री मोदी पर योजनाओं को बंद करने और फिर उसी योजना को नया नाम देकर शुरू करने का तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यही तरीका राजस्थान की भाजपा सरकार भी अपना रही है।
सरकार का एक ही फंडा है कि पिछली जो सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद कर दो, उनका नाम बदल दो, और सिर्फ अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको राइजिंग राजस्थान के नाम पे जमीन अलॉट कर दो। इसके अलावा राजस्थान के अंदर सरकार काम नहीं कर रही है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC समानता को बढ़ावा देने के नए नियमों को लेकर निशाने पर है। देश भर में इसका विरोध सामान्य वर्ग के छात्र और संगठन कर रहे हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समानता को बढ़ाने के लिए UGC ने दिशा निर्देश जारी किए थे। स्वर्ण समाज ने इसे अपना विरोधी माना। स्वर्ण समाज या सामान्य वर्ग के छात्रों को भय है कि इसका दुरुपयोग उन्हें फंसाने के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा,
सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, उनके निर्णय का स्वागत। कुछ लोग गंदी राजनीति शुरू किया था, ये नरेंद्र मोदी का सरकार है जो सबका साथ सबका विकास केवल शब्द नहीं है, व्यवहार है। और कुछ राजनीतिक दल के लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि दोषी को बचना नहीं चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 2012 के पुराने नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा,
दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीजों को, फिर आज 26 में आगे नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा।
महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो सकता है। NCP अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार की विमान हादसे में हुई अचानक मौत के बाद उनकी जगह कौन लेगा, इसको लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है। वहीं NCP के एकीकरण की संभावना भी तलाशी जा रही है। NCP शरद पवार गुट इस समय विपक्षी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। अगर NCP के दोनों गुट एक साथ आ जाते हैं तो राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन जाएंगे। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।